श्रोताओं, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्यवचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे और प्रतिदिन की तरह आज भी प्रभु के वचन से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम के बारे में अपने मित्रों को भी अवश्य बताएं, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुनकर आत्मिक लाभ उठा सकें। यदि आपके पास कोई प्रश्न उठते हैं या समझ में नहीं आता है जो इस कार्यक्रम से संबंधित है, तो आप अपनी समस्या पत्र द्वारा हम तक अवश्य पहुंचाएं और हम आपकी सहायता प्रार्थना व वचन के द्वारा अवश्य करेंगे। मित्रों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यदि आप इस कार्यक्रम में बजाए गए गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप अपने पसंद की गीत और सुनने वालों के नाम पता स्पष्ट लिखकर भेजें, ताकि हम आपको आपके मनपसंद गीत सुना सकें। आज मैं कुछ श्रोताओं के पत्रों को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने हमें लिख भेजे हैं। पहला पत्र जिला पलामू झारखंड से है। अर्पण कुमार राम हमें लिखते हैं, सादर नमन। मैं आपके कार्यक्रम सत्य वचन का नियमित श्रोता हूं। आपके कार्यक्रम के द्वारा मुझे अमूल्य आशीष प्राप्त हो रहा है, जो मेरे हृदय को भाव विभोर कर देता है। आपके कार्यक्रम मेरे लिए उत्साह और प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं परमेश्वर से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सर्वत्र सफल हों एवं प्रभु यीशु मसीह की करुणा से इस जगत का कल्याण हो सके। आपके कार्यक्रम के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वह निश्चित रूप से हमें सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। मैं आपके कार्यक्रम से पूर्णतः प्रभावित हूं। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व एवं उनकी शिक्षा से पूर्णतः प्रभावित हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे शीघ्र ही कुछ मसीही पुस्तक भेज दें, जिससे मेरी जिज्ञासा पूर्ण हो एवं मेरा आत्मिक मार्गदर्शन हो सके। इस कार्यक्रम को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं अपने हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आपका कार्यक्रम अथाह आशीष का भंडार है। आपका कार्यक्रम सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाता हूं। पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे शीघ्र ही कुछ मसीही पुस्तक भेज दें। आपकी इस महती कृपा के लिए मैं सदैव आपका आभारी बना रहूंगा। आपका श्रोता अर्पण कुमार राम, पलामू झारखंड। मित्रों, हमने इस पत्र में देखा कि भाई अर्पण निरंतर हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और इसके द्वारा से अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप भी इस प्रकार के आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप हम तक इन आशीषों को पहुंचाएं और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, तो आप भी हमें अवश्य ही अपने पत्र हमें लिखें। इसी प्रकार का और एक खत हमारे पास में है। ये हमें लिखते हैं भाई सुगढ़ लुगुन, ये भी झारखंड से हैं, सिमडेगा जिला से। इन्होंने हमें लिखा है, आप सबों को हमारी ओर से मसीह नमस्कार मिले। इन दिनों प्रभु के अनुग्रह से हम सभी अच्छे ही हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी सकुशल ही होंगे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के द्वारा प्रसारित कार्यक्रम से मैं बहुत आशीषित हो रहा हूं। आप लोगों ने मेरे बेटे अंकित लुगुन के लिए प्रार्थना किया। प्रभु ने आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर मिर्गी की बीमारी से उसे चंगाई दिया। आप लोग मेरे बेटे अंकित लुगुन के लिए और बेटी अर्पणा के लिए प्रार्थना करें। हम लोग अभी कठिन परिस्थितियों में से होकर के गुजर रहे हैं। बहुत सारे परेशानियों का सामना है। शैतान हमें परेशान कर रहा है। चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें, ताकि हम इसमें बलवंत होकर और अधिक परमेश्वर की निकटता में आ सके और हमारे बेटे के नौकरी के लिए भी आप प्रार्थना करें। आपका श्रोता सुगर लुगुन। मेरे मित्र, हम इस पत्र में पढ़ते हैं कि भाई सुगर के बेटे को मिर्गी की बीमारी थी और प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से उसे चंगाई दिया। यदि आपके पास भी कोई प्रार्थना के विषय है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी प्रार्थना करें और आपकी भी मदद करें, तो आप भी हमें अपने खत लिख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ने से पहले, आज के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। हमारे जीत परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसे आपने हमें दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें, और विशेष करके हम धन्यवादित हैं हमारे इन श्रोता मित्रों के लिए, भाई सुगल लुगुन के लिए और अर्पण कुमार के लिए, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को सुना और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है और वे आशीषें हम तक पहुंचाने के लिए खत लिखे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें आशीषित कीजिए, उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए, शारीरिक मानसिक आत्मिक रूप से उन्हें बलवंत कीजिए, आर्थिक रूप से बलवंत कीजिए, ताकि प्रभु जो भी जरूरतें हैं आप में पूरा हो सके। इस समय जब हम आपके वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदयों को, हमारे विचारों को, हमारे एकाग्रतापन को आप खोल दें, ताकि जब हम आपके वचन सुने आपके वचन हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए। जो निराश हैं, दुखी हैं, प्रभु हम आपकी शांति मांग लेते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम आज के वचन पर ध्यान दें। लय व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय उसके 13 से 14 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और यदि इसराइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरोध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए, वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए। मित्रों, यहां पर हम मंडली के पाप को देखते हैं। पूरी मंडली का चढ़ावा पुरोहित के चढ़ावे के ही बराबर था। बलिदान के लिए सबसे उत्तम चढ़ावा एक निर्दोष बछड़ा था। आपको ज्ञात है कि महायाजक प्रभु के सामने समस्त मंडली का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए चढ़ावा भी बराबर का होगा। मेरे विचार से एक और सबक यहाँ हमें मिलता है, परमेश्वर के सामने केवल किसी व्यक्ति की ही जिम्मेदारी नहीं है परंतु सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। परमेश्वर राष्ट्रों का न्याय करते हैं और अधिकतर लोग राष्ट्र के पाप के भागीदार नहीं होते परंतु राष्ट्र के न्याय से वंचित भी नहीं रहते। सन 70 ईस्वी में जब यरूशलेम का विनाश हुआ तो पूरा राष्ट्र बंधुआई में चला गया। जब रोम साम्राज्य का पतन हुआ तो सभी गिर गए। मित्रों, मैं और आप भी उत्तरदायी हैं क्योंकि हम भी राष्ट्र के एक भाग हैं। परमेश्वर कलिसिया और स्थानीय कलिसिया का भी न्याय करता है। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि वे किसी उदारवादी कलिसिया के सदस्य बनकर ही अपनी साक्षी देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यह विचार उन्हें कहां से मिला? यह ईश्वर के वचन में तो नहीं है। यदि आप किसी ऐसी कलिसिया के सदस्य हैं जो परमेश्वर के वचन के सत्य को नहीं सिखाती, परमेश्वर भी आपका न्याय कलिसिया के साथ ही करेगा। आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं परंतु जब आप अपने को दूसरों से जोड़ लेते हैं तो क्या आप सामूहिक उत्तरदायित्व के दायरे में आ जाते हैं? जब प्रभु ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एशिया के 7 कलिसियाओं के नाम संदेश भेजे तो वह कलिसियाओं के नाम पर तो थे ही पर व्यक्तिगत रूप से भी लागू होते थे। हम लय व्यवस्था 4 अध्याय के 15 पद में आगे पढ़ते हैं, और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखें और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। मित्रों, धर्म वृद्ध राष्ट्र के प्रतिनिधि थे, उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य पुस्तक के प्राचीन कलिसिया के प्रतिनिधि थे। अब यहाँ की धर्म अनुष्ठान की परंपरा भी पुरोहित के चढ़ावे से मिलती जुलती है और मैं पुनः उसका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि यह पद 16 से 21 में विस्तार पूर्वक है। आगे हम देखते हैं प्रधान पुरुष अर्थात मुखिया के पाप। लय व्यवस्था 4 अध्याय उसके 22 और 23 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए। मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि इन सभी झुंडों के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से बलि चढ़ाते हैं क्योंकि वे पापी हैं। उनकी जिम्मेवारी प्रत्येक के मामले में फर्क है परंतु वे सब दोषी हैं। एक और सरकारी अधिकारी को लें, लोग जो मुखिया पद संभालते हैं उन पर अनेक प्रकार के आरोप भी लगाए जाते हैं। कई बार तो यह गपशप भी होता है और सिद्ध भी होते हैं। यह वास्तविक दोष होना चाहिए, उसके अपराध से उसको अवगत कराना चाहिए और तब उसे बलि चढ़ाना होगा। फिर धर्मवृद्ध एक जिम्मेवारी का स्थान ग्रहण किए हैं, उसकी बलि भी पुरोहित अथवा मंडली की बलि से किसी प्रकार कम नहीं होनी चाहिए। निजी परंतु व्यक्तिगत रूप से अधिक मूल्यवान होनी थी। मित्रों, इससे एक सबक और सीखने को मिलता है कि प्रधान अर्थात मुखिया परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी है और वही उसे नियुक्त भी करता है। अभाग्यवश हमारे आजकल के राजनीतिज्ञ परमेश्वर को प्रसन्न करने का कुछ भी प्रयास नहीं करते। मैंने उनके अधिकतर भाषण सुने हैं और कई सुनना बाकी भी है। चाहे प्रजातांत्रिक हो अथवा गणतंत्रवादी, किसी ने भी परमेश्वर के प्रति जिम्मेवारी नहीं जताई। सदैव ही लोगों को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा है। वे अक्सर अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होने की बात करते हैं, परंतु परमेश्वर के प्रति नहीं। मित्रों, धर्मवृद्ध अर्थात प्राचीन के लिए बकरी का छोटा बच्चा नर का चढ़ावा लाना था। यह किसी बड़े बैल पशु के समान बहुमूल्य नहीं था। इनके लिए भी बलि के अनुष्ठान का नियम आदि उसी प्रकार से करने थे जैसा पुरोहित अथवा प्रजा के लिए निर्देश थे। ध्यान दें कि मानव का पाप उसी प्रकार जैसे किसी निजी व्यक्ति का हो और पशु की कीमत उसकी जिम्मेवारी के अनुकूल होनी चाहिए थी। अब हम आगे देखते हैं साधारण लोगों का पाप। इसे हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था 4 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए। अब यहाँ पर साधारण व्यक्ति निजी नागरिक के बारे में बात हो रही है। पाप अनजाने में हुआ परंतु ईश्वर के विरुद्ध उसके लिए बलि चढ़ाना है। कोई ऐसी बात जो प्रतिबंधित थी उसका दोष अपवाद नहीं परंतु उसकी पुष्टि होनी थी। मित्रों, इस बलि चढ़ावे से दोष दूर करना और विवेक को संतुष्ट करना था। केवल मसीह की मृत्यु ही आधुनिक मनुष्य के दोषारोपण को दूर कर सकता है। मनोवैज्ञानिक तंत्र से ऐसा किया जाना संभव नहीं है। किसी व्यक्ति का विवेक लोहे से दागा जाए और दोष कहीं दूसरे क्षेत्र में बदल कर चला जाए परंतु हृदय के अंदर अर्थात भीतर दोष चिपका रहता है, तो इसका निवारण केवल मसीह के निकट आने और उससे क्षमा पाने से ही होता है। मेरे मित्र, हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय के 28 पद में जहां पर लिखा है, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। अगर बाद में उसे पाप का ज्ञान हो तब फिर यह अनजाने का पाप नहीं रह जाता परंतु उसी प्रकार की भेंट या बलि चढ़ाना आवश्यक हो जाता है। वर्तमान में विश्वासी क्या करते हैं? वह खोए हुए पापी की तरह मसीह के सम्मुख आते और उसे निजी मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं। तब जब पता चलता है कि पाप किया है तो परमेश्वर के समक्ष अंगीकार करते हैं। हम 1 यूहन्ना 1:9 में पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मित्रों, एक मादा बकरी के बच्चे की बलि चढ़ाना पहले अनेक बलियों की अपेक्षा कम बहुमूल्य अर्थात सस्ता है, पर तो भी चढ़ावा चढ़ाना था। सारे बलिदान मसीह की मृत्यु की ओर संकेत करते हैं। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण वक्तव्य है, तब उसे क्षमा मिलेगी, पद 31 व 35 में हम पाते हैं। मित्रों, महत्वपूर्ण सत्य है कि दोषी के लिए पूर्ण क्षमा निश्चित थी, संपूर्ण क्षमादान सुनिश्चित था। सचमुच यही कार्य मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए भी पूरा हुआ। हम इफिसियों की पत्री 1:7 में पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तब इसके आगे हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक 6:24-25 में। यहां पर हम पाप बलि के नियम या विधान को पाते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए, वह परम पवित्र है। मित्रों, पाप बलि चढ़ाने का स्थान वही था जो होम बलि का स्थान था। दोनों ही यीशु मसीह की ओर संकेत करते हैं। पाप बलि पवित्र थी। अब हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक से 6 अध्याय उसके 26 और 27 पद में लिखा हुआ है, और जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए, वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस में से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना। मित्रों, पाप बलि पवित्र थी। आपको स्मरण है कि मसीह ने क्रूस पर से परमेश्वर को भजन 22 के शब्दों में यूं पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप क्यों मेरी मदद करने से इतनी दूर, मेरे दहाड़ने से भी अधिक दूर हो गए? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। भजन संहिता 22 उसके 1-3 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए पर तो भी निष्पाप थे। परमेश्वर उनसे दूर हो गए पर तो भी ईश्वर मसीह में संसार से मेल मिलाप कर रहे थे। मुझे यह समझ में नहीं आता। यह एक महान रहस्य है। वह पवित्र थे और अभी भी पवित्र हैं, पर तो भी हमारे पाप उस पर डाल दिए गए। हम नहीं जानते या समझते कि उसने क्रूस पर कैसे सहा, क्योंकि वह पवित्र है, और यद्यपि हम नहीं हैं पर तो भी हम उसकी वास्तविक दुख तकलीफ को नहीं समझ सकते। मित्रों, हम लय व्यवस्था 6:28-30 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए, यदि वह पीतल के पात्र में सिझाया गया हो तो वह मांजा जाए और जल से धो लिया जाए, और याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं, वह परम पवित्र वस्तु है। पर जिस पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ भी खून मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए, तब तो उसका मांस कभी ना खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। मित्रों, नियम अति सावधान करता है, यहां तक कि बर्तनों के संबंध में भी सतर्क करता है। आपको ज्ञात है कि चढ़ावा पाप के लिए है और पाप पवित्रता के विपरीत है। परमेश्वर इसी बात की अंतिम चेतावनी यहां पर देते हैं। हम यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसके 7-9 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे मित्रों, हमें स्मरण रखना चाहिए कि उसने हमें पाप से बचाया, न कि पाप की ओर से बचाया। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस लिखते हैं रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 1-2 पद में, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? मेरे मित्रों, यहां पर हमारे लिए भी एक चुनौती है कि जब हम पाप से बचाए गए हैं तो हमारे ऊपर में अनुग्रह हुआ है, तो हम क्यों पाप में अपना जीवन बिताएं? मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के अध्ययन के द्वारा आपको अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है। आपने इस बात को जान लिया है कि प्रभु यीशु ने हमें पाप से बचाया है। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाप से दूर रहें और पवित्रता का जीवन मसीह के विश्वास में जिएं। आज ही निर्णय लें कि आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, पापमय जीवन या पवित्र जीवन। यदि आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो आज ही मसीह के पास आएं, उसे अपने जीवन में आमंत्रित कहें और उससे कहें कि हे प्रभु, मैं आपके समान आपके निकटता में आकर जीवन जीना चाहता हूं। अपने पापों से मन फिराएं और निश्चय जानें कि वह आपको अवश्य ही आशीष प्रदान करेंगे। तो मित्रों, यदि आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो आइए हम सब मिल करके उसकी निकटता में आए और हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस अध्ययन के लिए, आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। इस वक्त प्रभु, हमने जो वचन अध्ययन किए हैं, हमने इसमें जान लिया है कि आप हमें पापों से बचाने के लिए आए। आपने हमारे बदले में अपने ऊपर पापों को ले लिया और आप क्रूस पर मर गए ताकि हम बचाए जाएं, उस दर्द से, उस बीमारी और खतरे से बाहर निकाले जाएं। पिता परमेश्वर, हम आपकी निकटता में आते हैं, अपने पापों को मानते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक को आप आशीषित कीजिए और अपनी महिमा प्रत्येक के जीवन से ले लीजिए। धन्यवाद प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना आपके बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तुझको आ जाना मेरी प्रथम प्रार्थना है। मेरे भजनों को गाना कैसा मन भावना है।
Thank you.